ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ ಮೇ ಆಪ್ ಸಭಿನೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಿ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಅಭಿ ಅಭಿ ವಿಶೇಷ ಇಶಾರಾ ಸುನ್ ರಹೆ ಥೆ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ವಿದೇಹಿ ಹೋ ಜಾವ್. ಸುನಾ ಸಭಿನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿಯಾ ಕಿ ಸಿರ್ಫ ಸುನ್ ಲಿಯಾ? ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಂತಿಮ ಪೇಪರ್ ತೋ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾ ಹಿ ಹೋನಾ ಹೈ, ಉಸ್ ಸಮಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಹೀ ಹೋಗಿ ಸೋಚನೆ ಕಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ನೆ ಕಿ. ಅಚಾನಕ್ ಆತ್ಮ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶರೀರ ಸೇ, ಶರೀರ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಸೇ, ಸಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಬಂಧನೋ ಸೇ ಫ್ರೀ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಬಾಬಾ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರಾತೆ ಹೈ, ಬಚ್ಚೆ ಅಶರೀರೀ ಬನ್ನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೋ. ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಗಾ ದೋ, ಚಲತೆ ಹುಯೆ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಕೋ ಬ್ರೇಕ್ ಲಗಾ ದೋ. ಲಗ್ತಿ ಹೈ ಬ್ರೇಕ್? ಯಹಾಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿಯಾ ಹೈ ನಾ ಸಬ್ನೆ, ನಹೀ ತೋ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ದೃಶ್ಯೋ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ಕೆ ಕಿತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಮನ್ ಮೇ ಉಠ ಜಾತೆ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ, ಕೈಸೆ ಹೋಗಾ, ಯೇ ಹುವಾ, ಯೇ ಹುವಾ, ಪ್ರಶ್ನೋ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಬಾಬಾ ನೆ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಹೈ, ಪಾವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಅಗರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಾಂತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ಸಬ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ, ಡ್ರಾಮಾ ಬಹುತ್ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೈ. ತಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ, ಔರ್ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಜ್ಞಾನ ತೋ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ತೋ ಬಹುತ್ ಹೈ, ಸಬ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಬೀಜ ಹೈ, ಜರೂರಿ ಹೈ. ನಯಾ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ನೆ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ದಿಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ಇತನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ದಿಯಾ ಹೈ, ಜೋ ಕಭಿ ಭೀ ಕೋಯಿ ಭೀ ಜಬ್ ದೂಸರೋ ಕಿ ಬಾತೆ ಅಭೀ ಆಜಕಲ್ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಐಸೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಕಿತನಾ ಪಢಾಯಿ ಕಿಯಾ, ಕಿತನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಢೆ, ವೇದ ಪಢೆ, ಪುರಾಣ ಪಢೆ, ಸಬ್ ಕುಛ ಪಢಾ, ಲೇಕಿನ್ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂ ಇಸಿ ಪಹಲಿ ಕೋ ಹಲ್ ನಹೀ ಕರ್ ಪಾಯೆ. ಅಭಿ ನೀಚೆ ಸಂತ ಸಮ್ಮೇಲನ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಆಯೆ ಹೈ, ಸಬ್ ಬಾತೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೌನ್ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂ? ಫಿಲಾಸಫಿ ತೋ ಬಹುತ್ ಕುಛ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಅನುಭವ ನಹೀ, ಪತಾ ನಹೀ ಕಹಾಂ ಕಹಾಂ ಕಿ ಬಾತೆ ಮಿಲಾ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ ದೇತೆ. ಸವೇರೆ ಏಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹುವಾ ಅಪ್ನಿ ಬಹನ್ ಕಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ತೀನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ, GOD ಗಾಡ್ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ತೀನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಬ್ ಉಸ್ನೆ ಬತಾಯೆ, ತೋ ಏಕ್ ಮಹಾತ್ಮ ಜೀ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭಾಷಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪನಾ, ಶಂಕರ್ ದ್ವಾರಾ ನಹೀ ಶಿವ ದ್ವಾರಾ ವಿನಾಶ. ಶಿವ ಶಂಕರ್ ಕಾ ಈ ಅಂತರ್ ಪತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಬಾಬಾ ನೆ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಜ್ಞಾನ ಕಿತನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಯಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ತೋ ಬನ್ ಗಯೆ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ಬೀಜ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ಅಗರ್ ತೋ ಕಭಿ ಕಭಿ ಸೂಖಾಪನ್ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೈ, ಸೂಖಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ. ಪಂಡಿತ್ ಕಿ ತರಹ ಕಹಾನಿ ಕರ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಕಥಾ ಕರ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಸುನ್ ಲೇತೆ ಹೈ, ದೂಸರೋ ಕೋ ಸುನಾ ದೇತೆ ಹೈ. ಉಸ್ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಜ್ಞಾನ ಬೀಜ ಹೈ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಸ್ನೇಹ ಕಾ ಪಾನಿ. ಬಾಬಾ ನೆ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಸ್ನೇಹ ಕೆ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಬಾಂಧಾ ಹೈ, ಯೇ ಪರಿವಾರ ಹೈ, ಔರ್ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಜಹಾಂ ಪ್ಯಾರ ಹೈ, ಸಚ್ಚಾ ಪ್ಯಾರ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ಯಾರ, वहां ही ज्ञान काम में आता है। नहीं तो ज्ञान शास्त्रों में ज्ञानी आत्मा किसको कहा था, कौन है जानते हो? उद्धव। भागवत में उद्धव और गोपियों का एक वृतांत आता है जो हमारे बिहार साइड के भाई बैठे हैं उनको पता है, जो शास्त्र विशेष सुनते हैं पढ़ते हैं। उसमें उद्धव जो है भगवान के प्रति बहुत समझ रखता है, बहुत ज्ञानी है, समझदार है, और गोपियां हैं वो तो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखती, वो तो सखा के रूप में, प्रेम के रूप में उससे हंसती बहलती खेलती हैं, वो अपना आनंद लेती हैं उसके साथ। और उद्धव को उसमें बड़ा गुस्सा आता है, क्या है देखो भगवान को नचा रहे, इनको पता ही नहीं है कौन है ये। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को बैलेंस बताया है, क्योंकि एक चीज है एक चीज नहीं है तो भी अनुभव नहीं किया जा सकता। सिर्फ ज्ञान है तो बाबा के प्यार का, साथ का, उनके मिलन का, उनसे प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता, सिर्फ ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ अगर उसके सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, तो कोई मेहनत नहीं लगती, युद्ध नहीं लगती, नहीं तो बहुत युद्ध करनी पड़ती है। कई बाबा के बच्चे अभी भी योद्धे हैं, युद्ध करते हैं, बैठे हैं योग में, युद्ध चलती है, अभी ये संकल्प आया, अभी ये संकल्प आया, इसको रोका, ये आ गया। आप कौन हो, योद्धे हो या योगी हो? बाबा नहीं कहता है कि मेरे बच्चे योद्धे बने, मेहनत करें, मुश्किल का अनुभव करें। बाबा तो चाहता है मेरे बच्चे प्यार में, मोहब्बत में समाए रहें, बस बाबा कहें और बाबा के पास आ जाएं। ऐसा सच्चा प्यार चाहिए। योग का आधार क्या है? सहज योगी जीवन का आधार सच्चे दिल का प्यार। और प्यार उत्पन्न कैसे होता? जब बहुत कुछ प्राप्त होता है, जिससे बहुत कुछ मिलता है, उसके बाद बहुत प्यार उमड़ता है। तो बाबा ने हम सबको कितना दिया है, या खुट खजाने दिए हैं। ज्ञान का चिंतन करो, कितना स्पष्ट ज्ञान, योग कितना सहज सिखाया बाबा ने। अपने साथ बुद्धि योग लगाना, मन मना भव, मन को मेरे में लगा लो। कल योग करेंगे लोग, क्या क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे। बाबा कहता है चलो ठीक है, शरीर के हेल्थ के लिए अच्छी बात है, करो। लेकिन मन मना भव हो जाए, मन शक्तिशाली बन जाए, मन बाबा में टिक जाए, उनकी शक्तियों का अनुभव होने लगे, जीवन परिवर्तन हो जाए, उसके लिए तो योग माना बाबा की याद। मन मना भव, एक में मन टिक जाए, वो योग बाबा ने सिखाया है, जिससे आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बन जाती है। तो आप सभी बहुत अच्छा बैलेंस बना करके चलेंगे तो ये लाइफ जो है ना, बड़ी सहज है, सुगम है, आरामदायक है। कल मैं एक बात पढ़ रहा था, बहुत सुंदर, तीन शब्द थे हैं तो थोड़ा उर्दू से मिलते जुलते, लेकिन मैं हिंदी उसका बताता हूं। कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको धैर्यता से, बहुत शांति से समझना पड़ता है। बातें आती हैं, बहुत धैर्यता से, शांति से उसको हल करना होता है। कुछ बातें होती हैं जो सहन कर लेनी होती है, और बहुत कुछ बातें हैं जो नजरअंदाज कर देनी पड़ती हैं। इसलिए एक उर्दू में शब्द आया, एक सब्र करो, एक बर्दाश्त करो, और तीसरा सबसे ज्यादा नजरअंदाज करो। समझ रहे हैं बात मेरी? कुछ सब्र कर लो, कुछ बर्दाश्त कर लो, और बहुत कुछ नजरअंदाज कर दो, स्थिति अच्छी बन जाएगी। बहुत सरल जीवन है। लेकिन अगर सब्र किसी को करना नहीं आता, धैर्यता नहीं है किसी के पास, तो क्या होता है? बहुत सारी अधैर्यता में तनाव पैदा हो जाता है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये बात आ गई। परिस्थितियां तो आनी ही है। बाबा कहता हूं कलयुग है, कलयुग के अंदर कोई बातें ना, ऐसा हो सकता है क्या? पिछले 84 जन्मों में आत्मा ने खेल खेले हैं, कितने पार्ट बजाए हैं, कैसे कैसे हिसाब किताब बनाए हैं, अब अंतिम समय में कहो मेरे आगे कोई पेपर ना आए, ऐसा हो सकता है? पेपर तो आएंगे, बाबा तो आएंगे। सब्र रखो, धैर्यता से, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सब्र करो, कुछ बातें आती हैं सहन कर लो, आई हैं, जहां रहते हैं वहां सहते हैं, सहन कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें डोंट केयर, अगर चले गए उसके विस्तार में तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए नजरअंदाज, देखते भी नहीं देखना, ठीक है? तो हमारी स्थिति सदा एक रस बने, अचल बने, अडोल बने, उसके लिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे बैलेंस, हर चीज का बहुत अच्छा संतुलन, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। एक बार एक बहुत सुंदर बैलेंस पर हमारी दादी जी ने मधुबन निवासियों से एक डायलॉग कराया। बैलेंस डायलॉग में बहनों को एक तरफ रखा, भाइयों को एक तरफ रखा, और बहनों को कहा तुम भावना बनो, और भाइयों को कहा तुम विवेक बनो। विवेक बहुत होता ना भाइयों में, बुद्धि बहुत चलाते हैं, और भावना में बहनें तो भगवान को बांध लेती स्नेह में, भावना में। तो दादी ने कहा अच्छा भावना जीतेगी या विवेक जीतेगा, हम देखते हैं कौन जीतता है। डिबेट हुई मधुबन के क्लास में, और उस डिबेट में भावना ने बहुत अच्छे बहस किया कि देखो भावना में तो भगवान भी बंध जाते हैं, जब चाहिए तो बुला लो, लेकिन भावना में अगर थोड़ा सा विवेक कम हो गया तो आज कितनी आत्माएं भटक रही हैं, भटक जाती, ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। अंधश्रद्धा युक्त भावना कहां से कहां पहुंचा देती व्यक्ति को। भक्ति के अंदर भावना थी लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, इसलिए अल्पकाल की प्राप्तियां हुई, सदा काल की नहीं हुई। इसलिए बाबा ने सिर्फ विवेक युक्त नहीं बनाया और सिर्फ भावना युक्त नहीं बनाया, दोनों का बैलेंस सिखाया। अगर कोई ब्राह्मण बच्चा इस बैलेंस को समझ जाए, जहां पर विवेक का प्रयोग करना है वहां पर, विवेक माना बुद्धि का प्रयोग है, ज्ञान का प्रयोग है, समझ है ये राइट है, रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। विवेक बहुत जरूरी है, लेकिन भावना पूर्ण विवेक वो शून्य है, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, उसमें अहम पैदा हो जाता है, और वो अहम अहंकार का रूप, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी बड़ी अच्छी निर्णय शक्ति है, बाबा कहता है ये मैं ही मैलापन है, मैं आ गया। विवेक वाला जल्दी अहम भाव में आता है, और जहां अहम भाव होता है, अभिमान आ जाता है, वहां छोटी छोटी बातें इतनी फील होती हैं जो खुशी गायब हो जाती है, योग नहीं लगता, अपमान महसूस होता है। इसलिए ध्यान देना, जरा भी अगर अभिमान होगा किसी चीज का भी, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने सेवाओं की प्लानिंग का, योग्यताओं का, विशेषताओं का, तो क्या होगा? अभिमान अपमान की फीलिंग कराएगा। आज के वरदान में बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराया था, याद होगा, एक निराशा के संकल्प और एक अभिमान के संकल्प आप बच्चों के पास नहीं आने चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप बहुत निरहंकारी नम्र चित्त बन करके रहते हैं। नम्रता एक ऐसा गुण है जिस नम्रता के आधार से आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निर्माण का कार्य कर सकते हैं, लेकिन कई बार नम्रता भी, अधिक नम्रता नुकसान कर देती है। बहुत बैलेंस चाहिए यहां पर। इसलिए बाबा हम बच्चों को निमित्त और निर्माण का बैलेंस सिखाता है। बाबा ने निमित्त बनाया है बच्चों को, निमित्त बन करके कार्य करने हैं, लेकिन जहां झुकना पड़ता है, जहां पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वहां नम्र चित। मैं निमित्त हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करना चाहिए। कई बार निमित्त बनने का भी अहंकार आ जाता है। बहुत गहरी बात है ये। मैं निमित्त हूं ना, मैं बड़ी हूं ना, मैं समझदार हूं, बाबा ने मुझे सीट पर बिठाया है, इसलिए सबको मेरी माननी चाहिए। वो निमित्त भाव भी निरहंकारी बनने नहीं देता है। इसलिए वहां नम्रता का बैलेंस चाहिए, भावना और विवेक का बैलेंस चाहिए। भावनाएं बहुत जरूरी हैं भगवान को याद करने की, उनको साथ रखने की, सफलता प्राप्त करने की। अगर भावनाएं नहीं हो तो हमारे सेंटर्स पर भोगने लगे, बाबा तो खाता ही नहीं है, वो तो स्वीकार कहता है, हम तो खाते नहीं, हम तो अभोक्ता हैं। और बच्चों में अगर भावना न हो तो क्या कहेंगे, बाबा जब खाता ही नहीं है तो क्यों ये सब बनाएं, क्यों खिलाएं। लेकिन बहनें आज इतनी भावना से कई सेंटर्स पर सवेरे 4 बजे भोग लगाती हैं। हमारे पास समाचार आते हैं, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके, एक बहन की ड्यूटी होती है, सवेरे उठ करके पहले स्नान करती है, उसके बाद कोई चीज, एक चीज बनाती है बाबा के नाम पर बहुत प्यार से, और जब 4 से 4:45 तक योग चलता है तो बाबा के आगे रखती है, भोग लगता है। अभी मैं एक जगह गया था बड़ौदा गुजरात में, 4 दिन मैं वहां रहा, अमृत वेला कराया, तो 4 दिन मेरे सामने भोग था। हमने कहा अमृत वेले 4 बजे कौन बनाता है, बनाने वाला स्नान करता है? बोला हाँ, उसकी ड्यूटी है, स्नान करके एक चीज बनाते हैं। और मैंने ये देखा है, जिसने बहुत भावना से, सच्चे दिल से बाबा को भोग स्वीकार कराया है, उस सेंटर के कई प्रकार के विघ्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। सब भंडारे और भंडारी उसके भरपूर हो जाते हैं। तो भावनाओं का भाड़ा तो भक्ति में भी मिला है, ऐसे नहीं ज्ञान में ही मिल रहा है, भक्ति में भी भगवान ने दिया है। जैसी भावना रखी वैसे उसको साक्षात्कार कराए, वैसे उसकी प्राप्तियां हुई, उसके अनुभव हुए। लेकिन बाबा हमको ऐसी अंधश्रद्धा वाली भावना के लिए मना करता है। उसमें विवेक ज्ञान युक्त भावना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो ऐसे नहीं बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा कौन है, कहाँ है, किस रूप में मिलता है, उसे क्या संबंध है, यथार्थ पहचान से अगर हम बाबा कहते हैं तो सब प्राप्तियां हो जाती है, संबंध जुट जाता है, अपने आप कनेक्शन जुटते ही शक्तियां आती हैं, करंट आती है। लेकिन बिना भावना करते रहो बाबा बाबा बाबा, तो थोड़े समय के लिए सहयोग मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति बन जाए, परिस्थितियों को सहज आत्मा पार कर ले, वो संभव नहीं है। इसलिए विवेक भी जरूरी है, बैलेंस। चलिए, हम सब सेवाओं में बहुत रुचि रखते हैं। वर्तमान समय इस सीजन में, इस साल, शायद 2 साल 3 साल के बाद चांस मिला है, चारों तरफ धूम मचाई है सेवाओं की। इतनी धूम मची हुई है जैसे पता नहीं आगे सेवाएं होगी या नहीं होगी, लेकिन इतनी धूम है, मैं तो समाचार देखता हूं, पढ़ता हूं, ऐसे लगता है सब बच्चों के अंदर आ गया है कि जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, सेवाओं में इतना बिजी हो जाना जो तुम्हारी स्थिति डगमग हो जाए। कोई भी छोटी मोटी बात आ जाए, पेपर आ जाए, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, टेंशन पैदा हो जाए, तनाव आ जाए, बाबा कहता है ऐसी सेवा क्या करके कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसी सेवा। सेवा करो जरूर, सेवा तो हमारा ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन सेवा में सफलता का आधार है श्रेष्ठ स्थिति। अगर स्थिति बनाने का कोई ध्यान रखता है, उसका अमृत वेला शक्तिशाली है, मुरली पर अटेंशन है, छोटी छोटी बातों को मूड पर नहीं लेता, फीलिंग में नहीं आता, कुछ भी होता है डोंट केयर करना जानता है, स्थिति को डगमग नहीं करता, क्यों क्या मैं प्रश्नों में उलझता नहीं है, माना उसने अपनी स्थिति बनाई है। हम सब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं इस समय, वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कर रहे हैं, और श्रेष्ठ स्थिति ही अंतिम पेपर में पास करने का आधार है। ध्यान देना, परिस्थितियां बहुत वैरायटी और भिन्न भिन्न रूप की आएंगी। कलयुग के अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति होगी, अति के बाद अंत होगा, इसलिए उन परिस्थितियों को वही पार कर सकता है जिसने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है। सेवा करने वाला तो ठीक है, सेवा किया है, दुआएं मिली हैं, लेकिन स्थिति पर अगर ध्यान नहीं है, बैलेंस नहीं है दोनों चीजों का, तो परिस्थितियां उसको कभी भी फेल कर देंगी। इसलिए ध्यान देना, अंडरलाइन करना, बाबा अपने बच्चों को कहता है वर्तमान समय पहले स्थिति है फिर सेवा है। स्थिति पर फुल ध्यान दो। कई बार हम सेवाओं में इतना लग जाते हैं, ये करना ये करना ये करना ऐसे करना, अगर एक दूसरे की बात को कोई नहीं स्वीकार करता है, कहीं नहीं मानता है, कोई कट कर देता है, अगर उसने अपनी स्थिति नहीं बनाई है तो उसका इतना मूड खराब हो जाता है, जो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। लेकिन अगर उसने अपनी स्थिति बनाई है, सेवाओं में कोई भी बातें नीचे ऊपर आती हैं, ठीक है, सेवाएं छोड़ेगा लेकिन स्थिति नहीं छोड़ेगा। गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के जवाब दे देना, फट से कुछ न कुछ शब्द मुख से निकल जाएं, संबंध बिगड़ जाएं, दूरियां बढ़ जाएं, उस सेवा से क्या फायदा है। इसलिए ध्यान देना, बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर बैलेंस युक्त जीवन, जिससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, परिवार की ब्लेसिंग्स, आशीर्वादें मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, बाबा की दुआएं मिलती हैं, कोई भी कार्य बहुत सहज हो जाता है जो बैलेंस से चलता है, उसकी लाइफ जो है बहुत आनंदमय ब्लिसफुल लाइफ हो जाती है। इसलिए अपनी जीवन को बहुत आनंदमय बनाने के लिए, ब्लिसफुल बनाने के लिए बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। हर चीज का बैलेंस चाहिए, अति कहीं भी अच्छी नहीं। आप कहीं अच्छी बहुत परिवार के प्यारे बन जाओ, बहुत प्यार, बच्चों को प्यार दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, परिवार को बहुत स्नेह दे रहे हैं, कई बार वो स्नेह आपके लिए बंधन बन जाता है। कई आत्माएं बंधन में इतनी फंस जाती हैं कि मेरे बिना, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, इनके बिना मैं नहीं चल सकती। बाबा कहता, बच्चे ऐसा स्नेह क्यों दिया जो आपके स्नेह के पीछे कोई आत्मा फंस गई। इसलिए एक बैलेंस यहां पर, बाबा का बैलेंस देखो, हमारी दादियों का बैलेंस देखो। बाबा प्यार का सागर है, आता है कितना प्यार लुटाता है, ऐसे बच्चों की महफिल में जैसे बाबा अभी बस मेरा ही है, इतना दृष्टि से, टोली से, बोली से, सब प्रकार से खूब प्यार देता है। और लेकिन जब न्यारा होता था, एक सेकेंड में आंख बंद करता चला जाता, कितना भी रोकना चाहो रुकता है। ये न्यारे और प्यारे का बैलेंस हम बच्चों को भी, बाबा कहता, बच्चे ऐसे न्यारे नहीं बनना जो लोग डरने लगे, कहीं ब्रह्मा कुमारियों में गया है सन्यासी न बन जाए, डर लगता ना लोगों को। ध्यान देना, कई लोग इतने न्यारे बन जाते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं करना, और न्यारा बनते बनते कई लोग किनारा लग जाते, अलग हो जाते। बाबा ने हम सबको ऐसा न्यारा नहीं बनाया। ये ज्ञान हमारा निवृत्ति मार्ग का नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। लेकिन न्यारा बनना है देह मान से, देह अभिमान जो आत्मा को बार बार खींचता है, उस देह अभिमान से न्यारे बन जाओ। अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। परिवार से, संबंधों से, सेवाओं से, बिजनेस से न्यारे नहीं बनना है, लेकिन देह अभिमान से अगर न्यारे बनोगे तो बाबा कहता है परमात्मा के प्यारे बन जाओगे, और परमात्मा के प्यारे बन गए तो सबके प्यारे बन जाओगे। परमात्मा क्या है? बीज है ना। अगर बीज को प्यार करना सीख गया तो वृक्ष अपने आप उसके पीछे पीछे है। इसलिए सभी ध्यान देना, ये बहुत सुंदर बैलेंस है, और इस बैलेंस से जो आत्माएं परिवार में रहती हैं उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं सबकी। इसलिए ऐसे नहीं है रचना रची है, मैं तो बाबा की बन गई, बाबा अपने आप संभालेगा। कईयों को बड़ा जोश आ जाता है, जोश में होश नहीं रहता। जोश जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन ज्ञान की ग्लानी नहीं कराना। ब्रह्मा कुमारियों में गया, इसने अपने परिवार को नहीं ध्यान दिया, इसने अपने बिजनेस को ही ध्यान नहीं दिया, सब बिगाड़ दिया इसने। बाबा ने कब ऐसी ट्रेनिंग दी है, कब ऐसा ज्ञान दिया है कि तुम बाबा के बच्चे बने हो तो व्यवहार छोड़ करके आ जाओ? कहा है कभी? बैलेंस रखो। हम योग में बैठे हैं, 8 घंटा बैठे हुए हैं, योग लग रहा है या नहीं लग रहा है? काम धंधा छोड़ करके बैठ गए, बाबा ने कहा है श्रीमद दी है 8 घंटा योग कर, मैं तो सब बाबा को याद करूं, यही मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन सेवाएं छूट गई, लोग परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिजनेस फेल हो गया, सोर्स ऑफ इनकम का जो साधन था वही खत्म हो गया, कल के हाथ फैला हो गया किसी के आगे? कब बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है? बैलेंस रखो, और वो बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस। जैसे बाबा ने परमार्थ का हमें ज्ञान दिया है, बाबा के लिए परमार्थ माना परमात्मा के लिए, व्यवहार माना पारिवारिक जीवन के लिए। अगर हम परिवार पर 8 घंटा दे रहे हैं, परिवार के पालना में, उनकी संभाल में 8 घंटा हम समय दे रहे हैं, तो बाबा कहते 8 घंटा तुम बाबा के लिए दे दो। कितना अच्छा बैलेंस बना करके बाबा ने मुरली में दिया, साकार में। बच्चे 24 घंटे की दिनचर्या है, और इस 24 घंटे की दिनचर्या को 3 भागों में बांट लो। 8 घंटा आपको इस शरीर को भी देना जरूरी है। कोई कहे मैं तो नींद नहीं करूं, चल जाएगा, भोजन नहीं करूंगा, चल जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है निद्रा जीत बनो, मैं नींद नहीं करूंगा, चल जाएगा। निद्रा जीत का मतलब क्या है? नींद नहीं करना, लेकिन समय पर सोना, समय पर उठना, उसको निद्रा जीत कहते हैं। निराहारी माना ऐसा थोड़ी भोजन नहीं करेंगे और हमारा शरीर चल जाएगा, लेकिन आसक्तिपूर्ण भोजन नहीं करना है, अति में नहीं जाना है। ऐसा भोजन नहीं कर लो जो भारी हो जाओ, नींद आने लगे, विकार और बुराइयां और शरीर के अंदर विकृतियां आ जाए। बैलेंस रखो, समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर भोजन करना है, जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना ही करना, आसक्ति वाला भोजन नहीं करना। ये समझ दी है, ये ज्ञान है, और इस ज्ञान के बिना अगर आप चल रहे हो कोई भी चीज में, अति में जा रहे हो, मान लो आज कोई कहे आपको, यहाँ सिखा दे कि भाई 2 बजे उठ के योग करना चाहिए, हमारी मम्मा 2 बजे योग करती थी, हम लोग अपनी दिनचर्या में रेस्ट नहीं मिलती दिन के अंदर, हम 10-11 बजे सोते हैं और हम अपने हट से 2 बजे उठे हैं, उसके बाद हमको जरा भी बिस्तर पर जाने का टाइम न मिले, रेस्ट न मिले, कितने दिन आप 2 बजे का योग करोगे? शरीर साथ देगा? आखिर शरीर है, उसको रेस्ट चाहिए, समय पर नींद चाहिए, जितनी आवश्यक है उतनी चाहिए। इसलिए बाबा ने 3 भागों में दिनचर्या बांटी कि 8 घंटा शरीर में नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, एक्सरसाइज करना, 8 घंटा दे दो शरीर को, 8 घंटा बाबा के लिए निकाल दो। योग करो, बाबा की सेवा करो, किसी को कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाओ, बाबा के लिए 8 घंटा। और 8 घंटे के लिए शरीर निर्वाह जो परिवार रचा है, रचना की है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिजनेस है, खेती है, नौकरी है, कुछ भी करना पड़ता है, 8 घंटा वो है। अगर ये बैलेंस हमने बनाया है तो वो बैलेंस ही आपकी लाइफ को ब्लिसफुल बनाएगा, आनंददायक बनाएगा और सबकी ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी क्षेत्र में अति में आप चले गए, जोश में आ गए, अभी समय बहुत कम है, बाबा कहता है जो करना है कर लो, अभी पुरुषार्थ का समय है, फिर नहीं मिलेगा, सब बातों को छोड़ा किनारा करके आप बैठ जाओ गुफा में आकर के, फिर सारा दिन क्या करोगे, योग लगेगा सारा दिन? बैलेंस से चलो, बैलेंस से चलने से आप लंबा पुरुषार्थ कर सकते हो, बहुत काल तक वो चीज की जा सकती है। लेकिन अगर 1-2 दिन की बात है तो भले कर लो। कभी कभी हमारी सेवाएं ऐसी होती हैं, कई जगह पर मैं जाता हूं, रात भर नींद नहीं लोग करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, कभी कभी उछल जाता है सेवा, ठीक है, लेकिन सदा तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए ध्यान देना, वो भी बैलेंस चाहिए, अति कोई चीज की ठीक नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, हर चीज में देखें सचमुच बैलेंस से चलते हैं। कोई भी चीज अगर हमने अधिक मात्रा में यूज कर ली तो दूसरी चीज नुकसान कर जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान, बाबा ने एक एक बच्चे को एक संतुलन, 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने उन 3 बातों पर ध्यान दिया है तो एक बहुत आनंदमय जीवन है और सबकी दुआएं उसको मिलती रहती हैं। एक सबसे पहली बात है स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। आप कभी भी अगर स्वचिंतन कर रहे हो, कहते हैं बाबा का एक शब्द है, मुरली में आता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई दूसरा पिलाएगा ना घोट करके तो भी नशा नहीं चढ़ेगा, थोड़ी देर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। लेकिन अपने आप को नशे में रखो, अपने सम्मान में रहना सीखो, अपने आप को पढ़ाना सीखो। अगर आप अपना परिवर्तन सचमुच करना चाहते हो, कोई संस्कार को छोड़ना ही चाहते हो, तो मुरली से, क्लासेस से, किसी के कहने से वो छूटेगा नहीं। उसको छोड़ने की विधि है, वो आपको अपने आप पर मेहनत करके अपने को पढ़ाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, मुझे इसे छोड़ना है, ये मेरे लिए बहुत नुकसानकारक है, घातक है। अब इसके लिए स्वचिंतन करो, स्वयं को स्वयं पढ़ाओ, स्वयं से बातें करो, एकांत में चले जाओ, एक की याद में मस्त हो जाओ, बाबा की एकांत में किरणें लो, और जब बीच बीच में समय मिले, दिखावा नहीं, दिखावे वाला योग नहीं चाहिए। कर्म कर रहे हैं, 1 सेकंड में शरीर ही बन गए, बाबा के पास चले गए, इससे संस्कार परिवर्तन होंगे। लेकिन लोग स्व के लिए समय नहीं दे रहे हैं और दूसरों के लिए, ये ऐसे करता वो ऐसे करता, ये बदल जाए ये ठीक हो जाए मैं ठीक हो जाऊंगा, इसके कारण मेरा पुरुषार्थ रुका हुआ है, इसका व्यवहार ठीक नहीं, इसका व्यवहार ठीक नहीं। बाबा कहता वो ठीक हो या न हो तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, है किसी को बदलने की जवाबदारी आपको दी है क्या? लेकिन हम लोगों की आदत बनी है, ये बदले वो बदले, ये ऐसा कर रहा वो ऐसा कर रहा है, हम खुद पर ध्यान नहीं देते, दूसरों पर ऐसे ये करे ये करे ये करे, बाबा इसलिए कहता है बच्चे दूसरों को बदलने की जवाबदारी मेरी है, मैं बदल दूंगा, तुम अपने को बदल लो, खुद को बदल लो। तो मुझे खुद को बदलने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए स्वचिंतन कर, बाबा की मूल्यों का चिंतन करो, वरदान सुनते उसका चिंतन करो, अभ्यास करके देखो उस स्वरूप में मैं स्थित रहूं, बार बार स्मृति में लाऊं, उसका स्वरूप बन जाऊं, ये स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और कोई किसी का दूसरे का चिंतन कर रहा है, आज मंजिल पर पहुंचने के लिए कितनी भी रास्ते में साइड सीन आए, मान लो आज आप यहां से ट्रेन पकड़ना है या प्लेन पकड़ना है, आप यहां से गाड़ी में बैठते हो, आपको लक्ष्य है कि 4 घंटे में हमें वहां पहुंचना है, टाइम है हमारा पहुंचने का, रास्ते में कुछ भी हो रहा हो, कितना भी डांस हो रहा हो, कोई बहुत रमणीय दृश्य हो रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसी अच्छी मार्केट लगी हो, रुकोगे आप? कोई नुकसान हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहेंगे नहीं नहीं छोड़ो इसको, मुझे अपने मंजिल पर पहुंचना है, मुझे अभी अभी जाना है, पहुंचना है। तो हम कभी भी किसी साइट सीन पर ध्यान देते हैं क्या? कैसे भी आएंगे। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, जिसके सामने मंजिल है, कौन सी मंजिल है? विनाश के पहले मुझे संपन्न संपूर्ण बाबा के समान बनना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जिसके सामने वो लक्ष्य है, बीच में कितने भी साइट सीन्स की बातें हैं उसकी वो कोई परवाह नहीं करता। कुछ भी हो रहा हो, मुझे क्या करना, ये हुआ वो हुआ। कईयों का टाइम जो इस समय है ना, संगम का अमूल्य समय, दूसरी बात बता रहा हूं, संगम का अमूल्य समय है, जिसमें एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई की जा सकती है, एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का समय है। आज ये हो रहा है, आज वो रहा है, ये सरकार ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, यहां ऐसे हो रहा है। अरे बाबा कहता है ऐसे वैसे तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ड्रामा की अंतिम सीन के अंदर ये सब हो रहा है, नाटक चल रहा है। हम तो बहुत रमणीकता से कहते नाटक नाटक, समझ रहे हो? अटकना नहीं, अटक गए तो लटक जाएंगे। इसलिए जो कुछ हो रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, बाबा ने मुझे मंजिल सामने दिखाई, बच्चे तुमको पहुंचना है, तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनना है, इसलिए कुछ भी हो रहा हो मुझे नहीं देखना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ये संगम का श्वास, संगम का संकल्प, संगम का समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। एक एक ब्राह्मण बच्चे को इसको बहुत ध्यान से सफल करना है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। इसलिए इतना अंदर से संकल्प करो, मुझे कुछ भी नहीं देखना सुनना है, मुझे अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो लक्ष्य को सामने रखकर वो लक्षण हमारे जीवन में आ जाए। लक्ष्य और लक्षण का भी बैलेंस चाहिए। कई बार लक्ष्य बड़े ऊंचे ऊंचे होते, संकल्प बहुत करते, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, प्लान बहुत बनाते, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। सोचते बहुत कुछ हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, बैलेंस ही नहीं है। तो ध्यान देना, अगर हमने लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है कि मैं ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनना है तो फरिश्ते जीवन के लक्षण, लक्ष्य के प्रमाण होने चाहिए। अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। अगर हम सब चाहते हैं कि हम ब्राह्मण सो देवता बने, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने, तो चेक करना पड़ेगा उन दिव्य गुणों पर मेरा ध्यान कितना है। क्या वो दिव्य गुण मेरे जीवन में समाते जा रहे हैं, या ऐसे ही सिर्फ हम कह रहे हैं हम देवता बन जाएंगे? आप किसी को बोलो हम देवता बनने की ब्रह्मा कुमारी यहां पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, और रास्ते में जाते समय किसी से गुस्से में बात कर रहे हो, जोश में बोल रहे हो, लड़ रहे हो, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्से में आ रहे हो, लोग क्या कहेंगे? देवता बनेगा, देवता बनेगा, रॉयल्टी है ये, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जीवन तो है ही नहीं। आप गए यहां से ट्रेन में, डब्बे पीछे, कोच के पीछे, सीट के पीछे झगड़ गए जाकर के, कहेंगे ये देखो यही सीख क्या है ब्रह्मा कुमारी में, यही सिखाया गया इनको, ये कहते हैं हम शांति के फरिश्ते हैं, हम शांति के दूत हैं, और क्या कर रहे हैं ये, छोटी छोटी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपके चलन और चेहरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, ज्ञान से नहीं होगा। आपकी जीवन बताए कि हाँ सचमुच भगवान हमें पढ़ा रहा है। आप मुख से कहोगे तो हंसेंगे, कहेंगे निकले भगवान फिर ही बैठा है पढ़ाने के लिए। अगर भगवान हमें पढ़ा रहा है तो बेफिक्र स्थिति होनी चाहिए ना, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों गम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? वो पढ़ाने वाला हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान गाइड करने वाला हमारे साथ है। अगर निश्चिंत जीवन नहीं है, चिंताएं सिर पर बहुत सारे लेकर के घूम रहे हो, आपको निश्चय नहीं भगवान हमारे साथ है, भले मुख से कह रहे हो। अगर सचमुच साथ है तो उसकी निशानी देखो दिखाई देनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या निश्चय था, अरे बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, स्थापना तो होनी ही है। एक दिन का दृश्य सुनाता हूं, बाबा आए थे अव्यक्त बाबा ओम शांति भवन में, बहुत सारी बातें, बहुत सारी रुकावटें विघ्न आते हैं ना संस्था के ऊपर भी, तो बाबा मुरली चलाते चलाते अचानक रुक गए। हम टाइप कर रहे थे और बहुत सारे भाई बहने लिख रहे थे, टेप हो रही थी, बाबा ने सबको कहा रुको रुको रुको, बंद करो सब, सब रुकवा दिया, कोई नहीं टाइप करेगा, कुछ नहीं करना, ऐसे इशारे में सब बंद करा दिया। फिर दादियों को बुलाया, अच्छा बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जो जो बातें हैं यज्ञ के आगे, जो हमारे विघ्न आते हैं छोटे छोटे, वो सब दादियों ने बड़ों ने सुनाया बाबा को। बाबा इतना बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बहुत मुस्कुराते हुए कहता, बच्चे जो सवेरा आने वाला है उसको कोई रोक सकता है क्या? जो स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, जो सत्युग की स्थापना के लिए आप बच्चे निमित्त हो, उसको कोई रोक सकता है क्या? अगर नहीं रोक सकता है तो ये बातों की परवाह क्यों करते हो? बातें तो आएंगी, खत्म हो जाएंगी। जिस स्थापना के लिए हम निमित्त बने हुए हैं, वो स्थापना करने वाला जब हमारे साथ है और करेगा ही, निश्चय है हमें, अटूट निश्चय है, तो बीच में कितने भी विघ्न आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी लोग विरोध करें, वो कब तक करेंगे? विजय तो हमारी निश्चित है निश्चय। जिसको निश्चय है उसकी स्थिति निश्चिंत है, और अगर निश्चय में थोड़ी भी मार्जिन है, स्थिति निश्चिंत नहीं रह सकती। तो ध्यान देना, हम सब बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह हैं। हमारी चाल चलन से, व्यवहार से, तो समय की वैल्यू को समझो, स्वयं के चिंतन को समझो, और साथ साथ जो हमारे संयम हैं, जो हमारे नियम हैं, उन पर ध्यान दो। ये तीन बातें अगर ध्यान पर रहेंगी, समय कौन सा है, स्वयं के लक्ष्य के अनुसार हमारा लक्षण कहाँ तक आए हैं, और साथ साथ यज्ञ के ईश्वरीय कायदे क्या हैं, संयम क्या हैं, जिसने इन तीनों बातों पर ध्यान दिया है वो बहुत बैलेंस से चलता है, ब्लिसफुल लाइफ है, और सबकी बैलेंस से दुआएं जो मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उससे उसकी जीवन बड़ी सरल, मेहनत मुक्त जीवन है। तो सभी ऐसे बनके बाबा के घर से ठप्पा लगा के जाना कि बाबा हम मेहनत मुक्त बन करके जा रहे हैं, योद्धे नहीं हैं, क्या हैं? योगी हैं हम, और सहज योगी हैं, हठ योगी नहीं। ठीक है, ओम शांति।